आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। एक पत्रकार से डरी पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ बोलने पर एक सीनियर जर्नलिस्ट को देशद्रोही बताया जा रहा है। क्यों सवाल नहीं सुनना चाहती पाकिस्तानी सेना? शैलेंद्र पांडे एक बहुत ही बेगैरत और बुजदिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं, तुम्हारा पता है हमें कि तुम कौन हो। सफेद पठानी कुर्ता पायजामा पहने हामिद मीर हाथ में माइक पकड़े बोल रहे थे और पास खड़ी भीड़ एकदम चुप। इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़े होकर कोई सेना के खिलाफ खुलेआम ऐसे तो नहीं बोलता। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कुछ कहा तो हामिद ने तुरंत जवाब देते हुए अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को घसीट लिया। लोग उत्साह में आ गए। इसके बाद मीर ने शब्दों की रही सही दीवार भी गिरा दी। राजनीति शरण तो तुम्हारे बाप जनरल परवेज मुशर्रफ ने ली, जो चूहे की तरह जाकर छिप गया। बैंक अकाउंट्स चेक कराओ, मालूम पड़ जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। पाकिस्तान में मीडिया का जाना पहचाना चेहरा है हामिद मीर। अपने स्पेशल शो कैपिटल टॉक में देश की कई हस्तियों को सवालों के जरिए घेरते आए हैं। दो मखमली बातों के बीच अपने मेहमान की तरफ धीरे से चुभते सवाल उछालने का हुनर है उनमें। इसी बात ने सैन्य अफसरों के देश में उन्हें जनता का हीरो बना दिया। करीब दो दशक से पाकिस्तान के नेशनल चैनल जियो टीवी पर ऐसा ही करते आ रहे थे मीर, लेकिन इस बार जब शो आया तो उसमें वो नहीं थे। और इसकी वजह है यही भाषण जो उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर दिया। जर्नलिस्ट और यूट्यूबर असद अली तूर पर हुए हमले के विरोध में मीर ने जो कहा उसे राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान के अनुशासित संस्थान के खिलाफ अपमानजनक बताया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है और इन सब के साथ ही चैनल ने उन्हें शो से हटा दिया है। मीर का कहना है कि चैनल के मैनेजमेंट ने उनसे अपना पक्ष रखने या फिर भाषण का खंडन करने को कहा था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में सेना और ISI को सारी आलोचनाओं से परे समझा जाता है। जनता की चुनी हुई सरकार तक इन पर उंगली नहीं उठा सकती। वहां मीर खुलेआम सेना और सरकार दोनों से पंगा लिए बैठे हैं और इसकी वजह है उनके सवाल। हालांकि एक समय वो सैन्य प्रतिष्ठान के बेहद करीबी थे, इतने कि 3-3 बार अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से मिलाए। तोरा बोरा की जिन पहाड़ियों में पूरी सेना लादेन के ठिकाने का पता नहीं लगा पा रही थी, वहां बैठकर हामिद ने अलकायदा प्रमुख के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। तीसरी बार इंटरव्यू किया अमेरिका पर 11 सितंबर 2011 को हुए हमले के बाद। पाकिस्तान में सभी को पता था कि सेना और ISI की शह के बिना मीर ऐसा कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह के एक और वाक्य का जिक्र किया है पाकिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग कर चुके डेक्लॉन वॉल्श ने अपनी किताब द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में। वॉल्श ने एक उड़ती हुई कहानी सुनी थी कि कश्मीर का कोई जिहादी कमांडर मीर के ऑफिस में पहुंचा और उन्हें एक भारतीय सैनिक का सिर भेंट कर दिया। वॉल्श ने इसे झूठा प्रचार माना था, लेकिन जब उनकी हामिद मीर से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बारे में पूछा। मीर ने मुझे बताया कि घटना सच्ची है, उस जिहादी ने एक शॉपिंग बैग से कटा हुआ सिर निकाला। लेकिन प्यार मोहब्बत से भरा यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। मीर ने 2002 में जियो टीवी ज्वाइन किया। इसी साल शुरू हुआ कैपिटल टॉक और मीर की बातों ने ताकतवर लोगों की नींद उड़ानी शुरू कर दी। शो की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसके साथ मीर के दुश्मनों की संख्या भी। वो तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जनता की आवाज बन गए। 2007 में मुशर्रफ के विरुद्ध भड़के जन आंदोलन को समर्थन का खामियाजा शो पर बैन के रूप में सामने आया। तब भी कुछ वक्त के लिए मीर को शो से हटना पड़ा था, लेकिन अगले साल आम चुनावों के साथ ही उनकी भी वापसी हो गई। हालांकि सेना और ISI के आंखों की किरकिरी तो वो बन ही चुके थे। अप्रैल 2014 में जानलेवा हमला किया गया उन पर। कराची एयरपोर्ट से लौटते समय हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मीर ने पीछे की सीट पर छिपकर अपनी जान बचाई, तब भी कई गोलियां उनके जिस्म में पैबस्त हो चुकी थी। घंटों ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उनकी जान बचा सके। मीर ने अपने दोस्तों और परिवार को पहले ही ऐसी किसी स्थिति के प्रति आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उन पर हमला हुआ तो इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और इसके चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम जिम्मेदार होंगे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अपने भाई आमिर मीर के जरिए बयान जारी किए और तब खुलेआम पहली बार किसी ने ISI को कोसा, उसे कत्ल की साजिश का जिम्मेदार ठहराया। मीर ने बताया था कि हॉस्पिटल में लोग दोस्त के वेश में आते और दुश्मनों का डराने वाला संदेश छोड़ जाते। वे मीर पर दबाव डालते पाकिस्तान छोड़ने के लिए। मीर का दावा था कि उन्हें डराने धमकाने वाले लोग सेना से जुड़े हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच है उन लोगों की। हालांकि सेना ISI पर उठी उनकी उंगली को तब भी देश का विरोध माना गया था। मीर अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। जियो को कुछ दिनों के लिए ऑफ एयर होना पड़ा और मीर पर उनके ही साथी पत्रकारों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। डेक्लॉन वॉल्श के अनुसार हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए मीर को दूसरे टीवी एंकर्स के मैसेज आते। उनमें वे लोग माफी मांगते हुए कहते कि आज शाम को अपने प्रोग्राम में हम आपका विरोध करेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मीर आज फिर पाकिस्तान में मीडिया पर लगाई जा रही बंदिश का उदाहरण बने हुए हैं, लेकिन उनके साथ काम कर चुके कई लोग अब भी उन पर पूरी तरह भरोसा कायम नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मीर ने जो कुछ किया बस अपने करियर को चमकाने के लिए। सेना का विरोध भी एक दिखावा है। कई मौकों पर वो खुद सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं। ऐसे लोगों के पास अपने अविश्वास के सबूत के रूप में 2010 में लीक हुआ वो ऑडियो टेप भी है, जिसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक ऑफिसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो बातचीत मीर और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के कमांडर के बीच हुई थी। उस समय आतंकियों के कब्जे में था पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक ऑफिसर। आरोप लगे कि मीर ने आतंकियों को उकसाया, उन्हें कुछ ऐसी सूचनाएं दी जिसके बाद उस ऑफिसर की हत्या कर दी गई। मीर इस टेप को झूठा बताते रहे, लेकिन उनके अपने चैनल ने इसे पूरी तरह सही बताया। झूठ और सच के इसी खांचे में मीर फिर फंसे हैं। उनके सवालों ने सिस्टम से परेशान जिस जनता को थोड़ी राहत पहुंचाई, उसे उम्मीद है कि हर बार की तरह उनका मीर फिर लौटेगा।
सिर्फ यही है देश और दुनिया की हर जरूरी नॉलेज, दिलचस्प जानकारियां और सार्थक मनोरंजन। सुने या पढ़ें और रहें दूसरों से 2 कदम आगे हर रोज। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारतगोल्ड.com पर।